म्राग्ने ययौ तद् अवमोचनम् वसुदेव पश्यत्य भ्रातरं नन्दमागतम् ज्ञानात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम् उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम् ज्ञानात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम् वसुदेव उपाश्रुत्य प्रातरं नन्दमागतम् ज्ञानात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम् वसुदेव उपाश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम् ज्ञानात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम् माताजी वसुदेव वसुदेव उपश्रुत्य व्हेन ही हर्ड भ्रातरम दैट इज डियर फ्रेंड एंड ब्रदर नंदम नंद महाराज आगतम हैड कम टू मथुरा ज्ञानात्वा व्हेन ही लर्नड दत्तकरम एंड हैड ऑलरेडी पेड द टैक्सेस राग्ने अंटू द किंग ययौ ही वेंट तत् अवमोचनम टू द रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ नंद महाराज ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन व्हेन वसुदेव हर्ड दैट नंद महाराज हिज वेरी डियर फ्रेंड एंड ब्रदर हैड कम टू मथुरा एंड ऑलरेडी पेड द टैक्सेस टू कंस He went to Nand Maharaj's residence. Purport by Srila Prabhupada. Vasudev and Nand Maharaj were so intimately connected that they lived like brothers. Furthermore, it is learned from the notes of Sripad Madhvacharya that Vasudev and Nand Maharaj were stepbrothers. Vasudev's father Shurasen married a Vaishya girl, and from her Nand Maharaj was born. Later, Nand Maharaj himself married a Vaishya girl, Yashoda. Therefore, his family is celebrated as a Vaishya family, and Krishna, identifying himself as their son, took charge of Vaishya activities, Krishi Go Raksha Vanijyam. Balram represents plowing the land for agriculture and therefore always carries in his hand a plow, whereas Krishna tends cows and therefore carries a flute in his hand. Thus the two brothers represent Krishi Raksha and Go Raksha. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो टुडे वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 5 वर्स नंबर 20 ट्रांसलेशन। व्हेन वसुदेव हर्ड दैट नंद महाराज हिज वेरी डियर फ्रेंड एंड ब्रदर हैड कम टू मथुरा एंड ऑलरेडी पेड द टैक्सेस टू कंस ही वेंट टू नंद महाराज रेसिडेंस। हरे कृष्णा। ओ हिंदी में अच्छा इज दैट ओके सेवादुला प्रभु। ओके ओके विल डू हिंदी बाय परमिशन ऑफ सेवादुला प्रभु। तो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि नंद महाराज उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया, बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया, बहुत ही ज्यादा 5 दिन तक कि देवता भी हैरान हो गए, देवी देवता भी हैरान हो गए, लक्ष्मी देवी भी हैरान हो गई, आजू बाजू के गांव वाले भी हैरान हो गए। 5 दिन तक इतना जन्माष्टमी मनाया। अब ये न्यूज अगर देवताओं तक पहुंच गई, लक्ष्मी देवी तक पहुंच गई, तो मथुरा में भी पहुंची, मथुरा में वसुदेव को समाचार मिला कि बहुत आवाज आ रहा है गोकुल में, बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं। वसुदेव डर गए कि मेरा बेटा उधर है कृष्णा। वसुदेव अपनी बेटी को गोकुल लेके गए थे और अदला बदली किया था, बेटी को रखा था, बेटे को गोकुल लेके गए थे और अदला बदली किया था, बेटे को रखा था और बेटी वापस लेके आए थे। तो सिर्फ वसुदेव और देवकी को पता है कि उनका बेटा किधर है, गोकुल में, और गोकुल में इतना शोर हो रहा है, इतना धूमधाम से जन्माष्टमी हो रहा है। और वसुदेव को यह भी पता है कि दूसरे दिन कंस ने पूतना को बोला कि आजू बाजू जो भी बच्चे हैं सबको मार दो। तो वसुदेव डर गए कि ये इतना बड़ा जन्माष्टमी हो रहा है, अगर कंस को पता चला कि अभी अभी उधर एक बच्चा पैदा हुआ है, 5 दिन हुआ है, जन्माष्टमी हो रहा है, तो कंस पूतना को कहेगा उसको भी मार दो। तो वसुदेव चाहता था ये प्रोग्राम बंद हो जन्माष्टमी का, मतलब इतना आवाज बंद हो, जन्माष्टमी नहीं बंद हो, आवाज बंद हो। इसलिए वसुदेव ने एक मैसेंजर को बुलाया, एक सेवक को बुलाया कि आप जाकर नंद महाराज को नियोता दे दो। अभी आसान नहीं था वसुदेव के तरफ से कोई व्यक्ति गोकुल में आए, क्योंकि कंस के जो जासूस थे वो देखते रहते थे वसुदेव के घर में क्या चल रहा है। तो अगर उनको पता चला कि ऐसा कुछ गया है तो कंस का इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा कि वो गोकुल क्यों गया, क्या बोलने गया, और पता चल जाएगा कृष्ण के बारे में कि ये तो वसुदेव का बेटा है। इसलिए वो जो सेवक था वो दोपहर में बोट लेकर नहीं आ सकता था, बीच में नदी है मथुरा और वृंदावन के, तो रात को तैर के आया, हालत खराब हो गया उसका। और सुबह नंद महाराज के सभा में आया और नंद महाराज को कहा कि वसुदेव ने मुझे भेजा है, आपके लिए कोई मैसेज है। तो नंद महाराज को मालूम था वसुदेव परेशानी में है, क्योंकि वसुदेव की एक बीवी रोहिणी माता को वसुदेव ने जब गर्भवती हुई थी तो नंद महाराज के पास भेजा था संभालने के लिए, और उनको बलराम हुआ था। तो वसुदेव के दो बेटे नंद महाराज के पास थे, कृष्ण और बलराम। लेकिन नंद महाराज को ऐसे ही पता है कि एक ही बेटा वसुदेव का मेरे पास है, वो सफेद वाला, काला वाला तो मेरा खुद का है श्याम। और वसुदेव और नंद महाराज भाई है। प्रभुपाद जी इधर बताते हैं जो वसुदेव के पिता है शूरसेन, वो यादव है, यदुवंश के हैं, और उन्होंने एक क्षत्रिय लड़की से शादी किया और उससे उनको वसुदेव पैदा हुए, और एक वैश्य लड़की से शादी किया और उनसे उनको नंद महाराज पैदा हुए। फिर वसुदेव ने देवकी से शादी किया और नंद महाराज ने यशोदा से शादी किया, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। इस तात्पर्य में मध्वाचार्य को कोट करते हैं, श्री मध्वाचार्य ने यह बात बताई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो सूरसेन के पिता थे देवमिधा, वो भी यादव हैं, उन्होंने दो शादी किया था, एक क्षत्रिय लड़की और एक वैश्य लड़की। क्षत्रिय लड़की से सूरसेन हुए और वैश्य लड़की से पर्जन्य हुए, और सूरसेन का बेटा वसुदेव, पर्जन्य का बेटा नंद महाराज। तो ये दोनों भाई हैं। एक आचार्य बताते हैं कि ये दोनों ऐसे भाई हैं कि पिता एक है, और दूसरे आचार्य बताते हैं कि ये दोनों ऐसे भाई हैं जिनका दादा एक है। कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। मेन बात इधर ये है कि दोनों भाई हैं, दोनों में दोस्ती है, दोनों में प्रेम है, और वसुदेव क्षत्रिय में वर्ण में सेवा कर रहे हैं और नंद महाराज वैश्य वर्ण में सेवा कर रहे हैं। तो वसुदेव और नंद महाराज की गहरी मित्रता है। कृष्ण बलराम और रोहिणी नंद महाराज के पास हैं, तो वसुदेव का जो सेवक था उन्होंने नंद महाराज को कहा कि मथुरा में हमारा हालत अच्छा नहीं है। कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया और उनके 6 बच्चों को मार दिया, और जो उनकी लड़की थी उनको मारने गया तो मार नहीं पाया, वो भद्रकाली बन गई, दुर्गा बन गई। और उसने कंस को कहा कि जो तुझे मारने वाला है वो ऑलरेडी पैदा हो चुका। तो कंस ने वसुदेव देवकी को जेल से निकाल दिया, लेकिन बुरी समाचार ये है कि कंस ने सब बच्चों को जो मथुरा में और उसके आजू बाजू गांव में है सब बच्चों को मारने के लिए बोल दिया। तो नंद महाराज को भी पता था कि बच्चे मर रहे हैं आजू बाजू, लेकिन कंस करवा रहा है ये पता नहीं था। बस इतना पता था कि बच्चे मर रहे हैं, पुतना मारती थी छुप छुप कर, लोगों को पता नहीं चलता था कौन मार रहा है, बस बच्चे मर रहे हैं। तो नंद महाराज घबरा गए कि ये तो प्लान चल रहा है बच्चों को मारने का, मेरे पास तो 2 बच्चे हैं इधर। तो वसुदेव के सेवक ने कहा कि आप ये प्रोग्राम छोटा कर दो, इसको कम कर दो। और वसुदेव ने एक बात और कहा कि तुरंत नंद महाराज खुद कंस के पास जाना चाहिए मथुरा में, और उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। हर साल राजा को टैक्स दिया जाता है, आज भी हम भी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इतना सारा टैक्स देते हैं। धीरे धीरे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये टैक्स बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि लोग बोलेंगे जंगल में रहो ज्यादा अच्छा, शहर में मत रहो, बिना म्युनिसिपैलिटी के रहो जंगल में गुफा में, इतना टैक्स। अभी भी बहुत टैक्स है, लोग कंप्लेन करते हैं, टैक्स बढ़ते जाता है। तो नंद महाराज परेशान हो गए और अपने सभा में बात किया मंत्रियों और दोस्तों से, और उन्होंने भी कहा कि टैक्स देना चाहिए, सांप के मुंह में खाना डाल देंगे तो चुप बैठेगा, कंस सांप है, क्रूर है, और उसको दे देंगे कुछ धन तो वो हमारे तरफ देखेगा नहीं। होता है कहीं कहीं समाज में गुंडे होते हैं,
तो भले आदमी क्या सोचते हैं, कौन झगड़ा करे, उसको कुछ दे दे और चुप बैठेगा, उसकी इच्छा पूरी करो छोटा सा दे दो उसको चुप बैठेगा हो। कभी हम भी किसी दोस्त से या भक्त से परेशान होते हैं तो क्या बोलते हैं, जो चाहिए दे दो उसको चुप बैठेगा। तो नंद महाराज ने कहा दे दो इसको चुप बैठेगा, और इस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया कि कल नंद महाराज और उनके कुछ साथी मथुरा जाएंगे और टैक्स देकर तुरंत वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं उधर। कृष्ण को छोड़कर कोई रुकना चाहेगा, मथुरा रुकना चाहेगा, नहीं जाएगा। एक बार हम लोग वृंदावन जाते हैं, वापस आने की इच्छा होती है, नहीं होती है। तो जो ब्रजवासी हैं उनको क्यों इच्छा होगी वृंदावन छोड़ने की, वो भी कृष्ण गोदी में बैठे हैं, उनको छोड़कर क्यों जाएंगे। लेकिन नंद महाराज को पता था इधर रक्षा की जरूरत है, तो उन्होंने अपने भाइयों को कहा और जो भी ग्वाल बाल थे हट्टे कट्टे पहलवान उनको कहा कि आप लोग गोकुल की सुरक्षा कीजिए, मैं जा रहा हूं। नंद महाराज ने कहा मथुरा जा रहा हूं टैक्स देने के लिए, गोकुल की सुरक्षा कीजिए और स्पेशली कृष्णा की सुरक्षा कीजिए, कृष्ण बलराम की सुरक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और ऐसी व्यवस्था करके दूसरे दिन सुबह वो यात्रा आरंभ करना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। उनके मन में इच्छा नहीं हो रही थी कृष्ण को छोड़कर जाने की। देखिए ये भक्त का आसक्ति है भगवान के प्रति, ये प्रेम है भगवान के प्रति, कि उनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। हमें ऐसा होना चाहिए कि राधा राजबिहारी को छोड़ने की इच्छा नहीं होना चाहिए। फिर वो कुछ भी हो जाए, किसी को धन का आकर्षक हो जाता है, किसी को स्त्री का आकर्षक हो जाता है, किसी को कोई और भौतिक चीज का आकर्षक हो जाता है, या किसी का मंदिर में अपमान हो जाता है, या कुछ कोई कह देता है और हम भगवान की सेवा छोड़कर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी पति से पूछो, उसकी पत्नी रोज अपमान करती है उसका ऑफिस जाने के पहले, फिर भी वो 25 साल 30 साल रोज अपमान सहन करके घूम फिर कर शाम को वापस घर आता है। मान लो इधर ऑफिस में बॉस अपमान करे, वो वापस ऑफिस जाएगा, नहीं जाएगा। समझो बॉस ने गाली दे दिया, जो गाली वो रोज एनी में सुनता है वही गाली बॉस ने दे दिया, वो तुरंत कंप्लेन करेगा एचआर को, या एफआईआर करेगा पुलिस को, या इंटरनेट पे डाल देगा कि मुझे अपोलॉजी चाहिए, मुझे माफी चाहिए। और इधर पत्नी रोज गाली देती है, अपमान करती है, बिंदास जाता है, वापिस आता है घर पे, अरे मत जाओ ना घर पे। तो उसी तरह अगर ये भी हमारा घर है और हमें कुछ बुरा अनुभव हो गया, नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया, क्योंकि सब लोग इधर जो है भक्त लोग हैं वो भी सीख रहे हैं, तो अगर कुछ बुरा अनुभव हो गया तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर की निगरानी में एडमिट हो और दूसरा पेशेंट कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, या जोर से खांस दिया, या बदबू आ रहा है, आप थोड़ी हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है मुझे ठीक होना है, तो ये थोड़ा दूसरे पेशेंट को सहन करना पड़ेगा, वो भी इधर ठीक होने के लिए आए हैं, मैं भी इधर ठीक होने के लिए आया हूं। उसी तरह प्रभुपाद जी का इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, हम सब लोग ठीक होने के लिए आए हैं। कभी कभी दूसरे पेशेंट लोग थोड़ा परेशान कर देते हैं, लेकिन छोड़ के जाएंगे तो रोड पे और तकलीफ होगा, राइट? कम से कम कुछ नियम तो है, पालन हो रहे हैं, छोड़ के जाएंगे तो और तकलीफ होगा। तो नंद महाराज को इच्छा नहीं थी जाने की, उन्होंने कृष्ण को अपने गोदी में लिया, और इतना सुंदर बालक, उनका इतना घुंघराले बाल है और छोटे 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 नरम नरम हाथ उंगलियां पैर और आंख नाक कान एकदम नरम नरम मक्खन की तरह हैं, सांवले हैं। और नंद महाराज सोच रहे थे, एक्चुअली नंद महाराज बहुत महान साधु है, हालांकि वो वैश्य समाज में है, राजा है, मगर अंदरूनी से वो बहुत महान साधु है। किसी को अपना दोस्त और दुश्मन देखते नहीं है। तो नंद महाराज सोच रहे थे कि 5 दिन पहले तक मुझे बिल्कुल डर नहीं था कंस का, मैं बिंदास था, कंस के बारे में बहुत सुन चुका था मैं पहले भी, उनको पता था वसुदेव को अरेस्ट किया था कंस ने, वसुदेव देवकी को जेल में डाला था, इसलिए रोहिणी नंद महाराज के पास थी, बलराम नंद महाराज के पास था। तो इतने दिनों तक ये समस्या चल रही थी, वसुदेव के बच्चों को कंस मार रहा था, वसुदेव की बीवी और एक बच्चा नंद महाराज के पास था, तो कभी भी कंस का सेना आकर नंद महाराज को अरेस्ट कर सकता है या आक्रमण कर सकता है कि वसुदेव की बीवी और बच्चे को रखा है। इतने दिन नंद महाराज को डर नहीं था, मगर आज जब मथुरा जा रहे थे उनको डर था। क्यों डर था? वो सोच रहे थे कि इतने दिन तो मुझे अपने जान का कभी डर नहीं रहा, आज मुझे डर लग रहा है जाने का मथुरा, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि नंद महाराज नहीं चाहते थे कि वो कृष्ण को छोड़ के जाए, अगर उनकी जान निकल जाए मथुरा में तो कृष्ण से वापस मिल नहीं पाएंगे। एक तो डर था कि कृष्ण को कुछ ना हो, मैं छोड़ के नहीं जाऊं, और दूसरा डर था कि मुझे कुछ ना हो ताकि मेरा कृष्ण के साथ संबंध न छूट जाए। तो कृष्ण को गोदी में रखे हुए थे, बहुत आनंद था, उस आनंद को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उनका मन बहुत विचलित हो गया था, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ तैयारी हो गया था, राइट, बैग पैक हो गया है, गाड़ी रेडी है और सबको आज्ञा दे दिया है मैं जा रहा हूं, डब्बा पैक किया है, और जा नहीं रहे तो राजा ही नहीं जा रहा है तो सब लोग क्या सोचेंगे बैठकर, क्या चल रहा है ये, राइट? कोई बैठ गया व्यासासन पे, क्लास ही नहीं दे रहा है, बैठा है, सब लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या है, या महाप्रसाद का थाली ये खा ही नहीं रहा है। अरे तैयारी हो गया, लेकिन उनका बहुत मन विचलित हो रहा है, ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, कृष्ण को छोड़ना इतना आसान नहीं है, हम शब्दों में बोल भी नहीं सकते जो उनको तकलीफ होती रोगी, इतने भावुक समय है वो, कृष्ण को छोड़ के जाना वृंदावन से मथुरा, कृष्ण छोड़ के गए ब्रजवासियों को, वो तो ब्रजवासी हेल्पलेस थे, जबरदस्ती कर नहीं सकते थे, इधर तो कृष्ण छोड़ नहीं रहे आपको, आप कृष्ण को छोड़ के जा रहे हो भले ही एक दिन के लिए, तो उनका मन बहुत विचलित हो गया था। लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि हमारा जो कृष्ण के प्रति भाव है उससे ऊंचा है कृष्ण की सेवा, और वो गए कृष्ण की सेवा करने के लिए, क्योंकि वसुदेव ने उनको अच्छा सलाह दिया था कि कंस को टैक्स दे दो, आपका कृष्ण सुरक्षित रहेगा, तो कृष्ण की सेवा के लिए वो ये किए। तो आखिर वो कृष्ण को यशोदा के गोदी में छोड़कर चले गए, और जब तक वो वापिस नहीं आए हमेशा कृष्ण का चेहरा उनके आंखों के सामने था, कृष्ण का स्माइल मुस्कान उनके सामने था, और उसी कारण वो थोड़ा दाढ़स बांध पाए। तो आखिर वो गए, कंस को उन्होंने हीरे दिए, जवाहरात दिए, सोने के आभूषण दिए, गाय दिए, दूध दिया, मक्खन दिया और धान्य दिया, चावल दिया, ये सब दिया, फल दिया, बहुत सारा उन्होंने टैक्स दिया, जितना हर साल देते थे उसे ज्यादा दिया कि कंस खुश रहे। कंस से मिल नहीं पाए, दूर से ही, कंस इन सब लोगों से मिलता नहीं था, अपने आसन में बैठा रहता था, उसका बॉडीगार्ड सेनापति मंत्री होते थे, कोई दूर से आता था, टैक्स देके चला जाता था, कंस देखता था, ओके बाय बाय दूर से। फिर नंद महाराज की बहुत इच्छा थी वसुदेव से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे। कंस को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं वसुदेव दोस्त है या हमारा संबंध है, क्योंकि नहीं तो कृष्ण को तकलीफ होगा। वसुदेव के जो भी परिवार है सबको कंस तकलीफ देता था कि कहीं बच्चा अपने दोस्तों के पास या परिवार के पास तो नहीं छुपा के रखा है, और इधर बलराम तो छुपा के ही रखा था। नंद महाराज को इतना पता था, वसुदेव के पता था, दोनों बच्चे छुपा के रखे थे कृष्ण बलराम को। तो वसु नंद महाराज मिलना चाहते थे लेकिन वो गए नहीं मिलने के लिए। फिर बाद में जब पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, नंद महाराज अपने घर में रह रहे थे मथुरा में अपने जगह में, तो वसुदेव छुपके आए नंद महाराज से मिलने के लिए। अब ये रिस्की है कि कंस को पता चल जाएगा ये दोनों संबंधी हैं, फिर भी आए क्योंकि इनका बहुत प्रेम था। और वसुदेव के मन में बहुत बेचैनी थी कि मैं एक बार तो कृष्ण का हाल पूछूं कि कैसा है कृष्ण। उस बेचैनी को रख नहीं पाए कि नंद महाराज मथुरा में, मैं मथुरा में हूं, मेरा बेटा उसके घर पे है, उनको भी तो कृष्ण से प्रेम है। तो वो छुप कर गए नंद महाराज से मिलने के लिए अंधेरे में, और दोनों गले मिले, खुश हो गए एक दूसरे को देखकर। एक्चुअली प्रणाम करना चाहिए वैष्णव में, तो जब मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है ना, वसुदेव क्षत्रिय हैं और नंद महाराज वैश्य हैं, तो वर्णाश्रम की दृष्टि से नंद महाराज ने वसुदेव को प्रणाम करना चाहिए, मगर उम्र में नंद महाराज वसुदेव से बड़े हैं, इसलिए वसुदेव ने नंद महाराज को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए उनका मित्रता ज्यादा था, इसलिए वो सिर्फ गले मिले, कोई बात नहीं, मित्रों में होता है, भक्तों में भी होता है जो मित्र में होते हैं, राइट। तो गले मिले और बातचीत किया, और वसुदेव ने बिना नंद महाराज को बता के कि मेरे दोनों बेटे आपके पास हैं, वसुदेव ने नहीं बताया कि कृष्ण मेरा बेटा है। उन्होंने पूछा उनसे, मेरा बेटा बलराम कैसा है और तुम्हारा लड़का कैसा है। फिर नंद महाराज ने बताया कैसे हमने जन्माष्टमी किया, कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, बलराम जी सब ठीक है, और टैक्स दे दिया उन्होंने। तो आगे भी बातचीत करेंगे जो हम अगले श्लोकों में देखेंगे। वसुदेव उनको जल्दी भेज देते हैं, जाओ जल्दी गोकुल जाओ, जल्दी जाओ, देर इधर ज्यादा दिन मत रुको, ऐसा करके भेज देते हैं उनको, क्योंकि वसुदेव को मालूम है पूतना घूम रही है बच्चों को मारने के लिए। और नंद महाराज आ जाते हैं, तो नंद महाराज वैश्य हैं इसलिए कृष्ण बलराम दोनों को वैश्य बताया जाता है। ऐसे कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव के बेटे हैं इसलिए उनको क्षत्रिय भी बताया जाता है, मगर हमें मालूम होना चाहिए कृष्ण बलराम दोनों वर्णाश्रम के ऊपर है, न वैश्य है न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ न सन्यासी, इनके ऊपर है वो। वर्णाश्रम उन जीवात्माओं के लिए होता है जो तीन गुणों के अधीन है, जो बद्ध जीवात्मा है, जो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में है, कर्म के नियम के अधीन है, उनके लिए वर्णाश्रम होता है, भगवान के लिए नहीं होता है या शुद्ध भक्तों के लिए नहीं होता है, नित्य परिकरों नित्य सिद्ध के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी अपना नर लीला, ह्यूमन लाइक पास्ट टाइम, मनुष्य जैसे लीला करते हुए भगवान खुद को वैश्य कहते हैं कृष्ण। जब गोवर्धन लीला के पहले भगवान कृष्ण नंद महाराज को कहते हैं कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए, तो उसमें वो कहते हैं कि हम तो वैश्य हैं, तो हमें इंद्र का क्या लेना देना, हमें तो जमीन गाय और गोवर्धन से लेना देना। तो बलराम जी और कृष्ण दोनों वैश्य के रूप में लीला की, और बाद में क्षत्रिय के रूप में भी किए, लेकिन खुद को वैश्य बोलते थे। और प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्णा भी बताते हैं भगवद गीता में, वैश्यों का चार होता है, चार ड्यूटीज होता है, चार कर्तव्य होता है, खेती करना, गाय पालना या दूसरे जानवर पालना, और बैंकिंग ट्रेडिंग, पैसे धन का देखना, धन अर्जित करना या दूसरों को देना, या बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग करना, एक सामान लेकर दूसरा सामान देना, एक किलो चावल लेके एक किलो कपड़ा देना, ऐसा। तो इसमें बलराम जी खेती का काम ज्यादा संभालते हैं, ऋषि और कृषि, कृषि और कृष्णा गायों का देखभाल करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपके पास जमीन है और गाय है तो आप अपना जीवन जी सकते हैं, गाय दूध देगा, जमीन से फल सब्जी ग्रेन्स होगा और हो गया आपका काम, और जमीन पे घास आएगा और वो घास गाय खाएगी और आपको दूध देगी, जब बारिश होगा तो घास अपने आप आता है, और जब घास अपने आप आता है तो गाय अपने आप घास खाती है, जब गाय अपने आप घास खाती है तो अपने आप दूध देती है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, और खेती थोड़ा बहुत करना है, उससे आपका जीवन चल सकता है। तो इसे बलराम जी के पास हल होता है, प्लो, खेती के लिए हल लगता है, और कृष्ण के पास बांसुरी होती है, बांसुरी से वो गायों को आकर्षित करते हैं। जब द्वारका में सांबा, कृष्ण का बेटा सांबा बड़ा हो गया तो वो गया हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में लक्ष्मणा थी, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था, शादी के लिए वो वर चुन रही थी, और सांबा भी उधर आया और लक्ष्मणा ने सांबा को नहीं चुना, नहीं चाहिए, मगर सांबा को लक्ष्मणा चाहिए, तो वो उसको किडनैप करके भाग के लेके गया। तो दुर्योधन और बाकी बहुत गुस्सा हो गए, छोटा सा उन्होंने सेना लिया और सांबा को जाकर हरा दिया, सांबा महारथी था लेकिन इन्होंने मिलकर हरा दिया उसको और बांध दिया, अरेस्ट किया। तो ये समाचार जब द्वारका में पहुंचा तो द्वारका वाले युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो बलराम जी ने कहा युद्ध के लिए मत जाओ, मैं जाके समझाता हूं दुर्योधन को, मेरा शिष्य है, समझ जाएगा। तो बलराम, उद्धव और बाकी कुछ लोग आए समझाने के लिए, और बलराम जी ने समझाने का कोशिश भी किया मगर ये लोग समझे नहीं। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि दुर्योधन और पार्टी ने बलराम जी की बात तो नहीं मानी लेकिन बलराम जी का अपमान किया, उससे बड़ी बात है कृष्ण का अपमान किया। तो बलराम जी इतना गुस्सा हो गए कि उनके पास जो हल था उस हल से उन्होंने पूरा हस्तिनापुर शहर को उखाड़ दिया। थोड़ा सा हल क्या होता है, थोड़ा सा जमीन में खड्डा करने के लिए होता है, उन्होंने पूरे बॉर्डर पे खड्डा किया और उठा लिया पूरे शहर को नदी में डालने के लिए। अब ये देखो क्या हल है और क्या बल है, ऐसा हल जो इतना लंबा हो गया कि एक जगह पे बैठ के पूरे शहर के बॉर्डर पे होल कर कर करके शहर को अलग कर दिया, और फिर उसी हल से उसको खींच के नदी में डालने के लिए तैयार हो गए। ये उनका हल और बल, बलराम। बलराम का नाम का मतलब है वो जो जिनको अपना बल दिखाने में आनंद आता है, बलराम, बल में आनंद आता है। तो एक जगह पे बैठकर उन्होंने पूरा हस्तिनापुर को पृथ्वी से अलग कर दिया, पृथ्वी से उखाड़ दिया। हम लोग ये मंदिर को भी नहीं अलग कर सकते, ये पिलर को भी अलग नहीं कर सकते, पूरे पृथ्वी से अलग कर दिया शहर को और डालने लगे। तो सब लोग बहुत डर गए, आके माफी मांगा, और सांबा, लक्ष्मणा और बहुत सारा डाउरी दहेज दे दिया, बोला भाई लेके जाओ, आपका बेटा लेके जाओ, आपकी बहू लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ, हमको माफ करो। ये बलराम जी का हल। और इसी हल से एक बार जब वो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे तो थोड़ा नशे में थे, दारू वगैरह नहीं, वारूनी, ये दिव्य रस है, ट्रांसेंडेंटल है, ये इंटॉक्सिकेशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुनी नहीं है, ये दिव्य है। तो नशे में उन्होंने कहा यमुना इधर आओ, यमुना देवी को इधर आओ। यमुना देवी ने सोचा मैं तो सेविक सेविका हूं, इनका सेवा करना चाहिए, लेकिन अभी नशे में अभी नहीं जाऊंगी। तो बलराम जी क्रोध में अपना हल लिए और यमुना को खींचा, इतना भार खींचा कि बहुत सारे यमुना के छोटे 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 नाल ये बन गए, कैनाल, कैनाल को क्या बोलते हैं, हाँ, नहर, नहर बन गए। फिर यमुना डर के आई, बोला सेवा के लिए आई हूं मैं। फिर बलराम जी गोपियों के साथ यमुना पानी में रासलीला किए और नहाए वगैरह, फिर जब आए बाहर तो यमुना देवी ने सेवा किया, कपड़े वगैरह दिया। तो ऐसे उन्होंने हल का इस्तेमाल किया। जब जरासंध मथुरा पे आक्रमण किया था अपने सेना के साथ, लाखों सैनिकों के साथ, तो अपने एक रथ पे बैठकर इतना बड़ा हल था उनका कि सेना के आखिरी तक जाता था, सबको मार 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 के, इधर बैठे बैठे सब, जैसे रिमोट कंट्रोल से हम चैनल चेंज करते हैं बैठे बैठे, वैसे सबको ऐसे ऐसे, कितना भी बड़ा, कितने किलोमीटर लंबा सेना हो उतना बड़ा हल हो जाता था, सबको टक 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 मार के कर देते थे। कृष्ण तीर से मारे जरासन की सेना को और खून की नदी बना दिया, और बलराम ने हल से मारकर उस नदी को फ्लड बना दिया, ओवर फ्लडेड बना दिया, बाढ़ आ गई खून की। कृष्ण ने खून की नदी बनाया, बलराम ने उस नदी में बाढ़ लाया, इतना हल से उन्होंने मारा। तो ये उनका हल है। और कृष्ण के पास है बांसुरी। जब भगवान कृष्ण गायों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते हैं तो सब गाय अपना नाम सुनते हैं। देखिए आजकल इसको मोबाइल में बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, एक से दो को कनेक्ट करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक से दो को कनेक्ट करेंगे आप तो आप बोलेंगे तो दोनों को सेम सुनाई देगा। इधर कृष्णा एक बांसुरी से हजारों को कनेक्ट करते थे, सबको अलग अलग सुनाई देता था, अपना नाम सुनाई देता। ऐसा टेक्नोलॉजी अभी आया नहीं है। तो कृष्णा का बांसुरी, जब कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो जो गाय है, गाय गाय के मुंह में घास है, लेकिन जब वो बांसुरी सुनती है तो घास चबाना बंद करती है, निगलना, घास घास को अंदर निगलती नहीं है, चबाती नहीं है और बाहर थूकती भी नहीं है। अब ये आसान है, मुंह में कुछ रखो खाने के लिए, अंदर भी मत लो, बाहर भी मत दो और चबाओ भी मत, ऐसे ही खड़े हो जाओ। ये संभव है? करके देखो आज, नहीं संभव है। मतलब इसलिए नहीं कि खाना स्वादिष्ट है, ऐसे रख के ऐसा रखना बहुत मुश्किल है, मैं करके देखा इसलिए बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल है ऐसा, मुंह में रखो और कुछ भी नहीं करो, अंदर भी मतलब बाहर भी नहीं और चबाओ भी मत, बहुत मुश्किल है ऐसा करना, कितने देर तक करेंगे? और गाय कहां से कंट्रोल करेगी? एक तो कंट्रोल की भी बात है ना, हमारी तो आदत है कुछ आया तो चबाओ उसको, मगर गाय एकदम आनंद में आकर्षित हो जाती है और चबाती नहीं है, फेंकती नहीं है, निगलती नहीं है, स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है, पेंटिंग की तरह, पत्थर की तरह। ये कृष्ण के बांसुरी का लीला है, इतना मधुर बांसुरी। और गाय का बछड़ा, गौ माता का निप्पल मुंह में है लेकिन वो दूध नहीं पीता, बांसुरी का सुनकर स्तब्ध हो जाता है, स्टन हो जाता है, पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है। हिरन बांसुरी का आवाज सुनकर पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं, पिकॉक मोर बांसुरी का आवाज सुनकर पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं, यमुना का पानी सॉलिड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और जो पत्थर और पहाड़ है वो पिघलने लगते हैं, वो पानी हो जाते हैं। ये देखिए बांसुरी का चमत्कार कि जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है, जो मूविंग है वो नॉन मूविंग बन जाता है, जो नॉन मूविंग है वो चलने लगता है। बंदर आकर्षित होते हैं, ब्रजवासी गोपियां आकर्षित होती हैं, देवी देवता आकर्षित होते हैं, अप्सराएं आकर्षित होती हैं कृष्ण की बांसुरी के ऊपर। ब्रजवासी अपना काम बंद करते हैं, गोपियां सब कुछ छोड़ के भागे कृष्ण की बांसुरी सुनकर। कोई गोपी सो रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को खाना गर्म करके दे रही है, कोई कुकिंग कर रही है, कोई गौशाला में सेवा कर रही है, कोई सास ससुर की सेवा कर रही है, कोई मेहमान की सेवा कर रही है, कोई झाड़ू मार रही है, सब कुछ छोड़ के आधा बीच में भागे। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई नहा रही है, कोई कपड़े पहन रही है, सब कुछ छोड़ के ऐसे ही भागे। कृष्ण की बांसुरी इतनी आकर्षित है। ब्रह्मा जी वो तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, उनका ध्यान कोई तोड़ नहीं सकता। जब वो बांसुरी का आवाज सुने तो उनका ध्यान टूट गया, उनका आंख खुल गया और उन्होंने सोचा इतना मधुर आवाज किधर से आ रहा है और ये तो मैंने नहीं बनाया। जो भी दुनिया में है सब ब्रह्मा जी ने बनाया, सब रंग, सब खुशबू, सब आवाज, सब स्पर्श, सब स्वाद ब्रह्मा जी ने बनाया। उनको सब कुछ मालूम है, उनको आप सरप्राइज नहीं कर सकते कि ये नया चीज लाया मैं। अरे है ही नहीं कुछ नया दुनिया में, सब कुछ तो उनको मालूम है। लेकिन बांसुरी का आवाज सुनकर उनको सरप्राइज हो जाता है, ये आवाज तो मैंने नहीं बनाया, ये कहां से आया मेरे ब्रह्मांड में, बाहर से आया, फॉरेन का माल लगता है, इंपोर्टेड आइटम, मेरा तो नहीं है ये, मैंने नहीं बनाया, बिना कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी के टैक्स के कैसे अंदर आ गया, जीएसटी के। ब्रह्मा जी भी सोचने लगते, चार कुमार भी, उनका ध्यान भंग हो जाता है, शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है, अनंत शेष का ध्यान भंग हो जाता है जब कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं। सब लोग आकर्षित होते हैं, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के बांसुरी पे आकर्षित होता है। आज बड़े बड़े लीडर हैं दुनिया में और पहले भी थे, जो पूरे दुनिया को आकर्षित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने सेना से, अपने न्यूक्लियर बम से, अपने शस्त्र से, या अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से, या अपने लीडरशिप से, या अपने मेहनत से, या अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से, अपने स्ट्रैटेजी से, लेकिन अपना बाथरूम भी कंट्रोल नहीं कर पाते, हर थोड़ी देर में जाना पड़ता है उनको। और ये कृष्ण है जिनको कुछ सेना नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, एक बांसुरी से। और वो बांसुरी को किसी को दिखाकर डराते नहीं है, क्या करते हैं बांसुरी में, फूंक मारते हैं। और बांसुरी भी क्या है, एक लकड़ी, लकड़ी जो खाली है, हॉलो, अंदर कोई माल नहीं है उसमें, खाली, और उसमें होल है। फैक्ट्री में कोई चीज में होल हो जाता है उसको डिफेक्टिव पीस बोलते हैं। एक खाली हॉलो लकड़ी में वो फूंक मारते हैं और पूरी दुनिया कंट्रोल में आ जाती है। ये भगवान नहीं है तो और कौन कर सकता है। हम फूंक मारेंगे कुछ होगा, मारो, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवान जब फूंक मारते हैं तो पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में आ जाती है। इसी से साबित होता है कि ये भगवान है, और कोई कर नहीं सकता। ये कोई ब्रह्मा शिव बांसुरी बजाएंगे तो दुनिया कंट्रोल में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में बैठकर, पूरी दुनिया उनके अधीन आ जाती है। और एक बार भगवान कृष्ण श्याम सुंदर वृंदावन के एक जगह पे, रोड पे बांसुरी ऐसे ही बजा रहे थे, सब लोग आकर्षित हो रहे थे, फूल पत्ते भी आकर्षित हो रहे थे, और सामने से श्रीमती राधा रानी आ रही थी अपने सहेलियों के साथ। और श्याम सुंदर ने देखा इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर गोपी, वो बांसुरी बजा रहे थे, इतनी सुंदर गोपी को देखकर उनके हाथ से बांसुरी गिर गई, नीचे गिर गई। लेकिन उनको पता नहीं चला बांसुरी गिर गई, फिर भी वो हवा में फूंक मार रहे थे। तो जो श्याम सुंदर पूरी दुनिया को बांसुरी से आकर्षित करते हैं, उस श्याम सुंदर को राधा रानी बिना बांसुरी के आकर्षित करती है सब सामने खड़े होकर। इतनी अच्छी राधा रानी का पहनावा है, इतना अच्छा ड्रेसिंग है, इतने सुंदर है, इतने अच्छे गहने पहनते हो दामोदर रति वर्धन वेश है, कि दामोदर को आकर्षित करती है सिर्फ अपने वेश से, सिर्फ अपने वेशभूषा से, सिर्फ सामने खड़े होकर। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप राधा रानी का अच्छा डेकोरेशन श्रृंगार करोगे, कृष्ण कभी भाग के नहीं जाएगा, इधर ही बैठा रहेगा। तो ये कृष्ण है जो मदन मोहन है, कामदेव मदन को भी आकर्षित करते हैं, और ये राधा रानी है जो मदन मोहन मोहिनी है, जो ये मदन मोहन कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। ये राधा रास बिहारी हैं, दे आर आवर डिवाइन मास्टर्स, वो हमारे मालिक हैं, और हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे मालिक के घर में रहते हैं, उनके महल में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और हम जितनी उनकी सेवा करते उसे कई गुना ज्यादा वो हमारी सेवा कर रहे हैं और हमें पाल रहे हैं। अब सिर्फ अपने मन में सोचना चाहिए कि जितना मुझे खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और जितना मैं सेवा कर रहा हूं उसमें क्या हिसाब है। कोई भी दुनिया में मालिक ले लो, और जितना आप कर रहे हो उतना करो उसके लिए। जो आपको राधा रसबेरी इधर बैठ के दे रहे हैं, देंगे क्या? उतना कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं उसको, उतना देंगे क्या? जितना खर्चा हमारे पे राधा रसबेरी कर रहे हैं, जितना आनंद में रखा है, जितना खुशी में रखा है, जितना महाप्रसाद खा रहे हैं, जितना स्वीट खा रहे हैं, जितना कपड़ा पहन रहे हैं, उसका जितना खर्चा है कोई और मालिक इस दुनिया में देगा जितना हम कर रहे हैं उतने में? कई गुना ज्यादा दे रहे हैं राधा रस बिहारी हमको। इतना बड़ा फॉर्चुनेट, इतना बड़ा अच्छा भाग्य है हमारा कि ऐसे जो हमारे असली मालिक हैं, जिनके हम अंश हैं, डायरेक्ट उनके महल में रहकर, हरे कृष्णा लैंड राधा रस बिहारी मंदिर में रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भाग्य है। ये भाग्य भी नहीं है, कॉजलेस मर्सी, कृपा है, अहेतु की कृपा। और फिर भी हम चूक गए सेवा करना, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। फिर भी हम चूक गए इस महल से छोड़कर गोलोक वृंदावन जाने के बजाय वापिस किसी जन्म ले लिया, किसी परिवार में या किसी जानवर में या पक्षी में, तो हम बहुत बड़ा गलती कर ली कि यहाँ तक आकर गोलोक वृंदावन जाने के बजाय फिर भौतिक दुनिया में चले गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, बहुत बड़ा चूक हो गया। इसके लिए हमें बहुत ही धैर्य से, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना भक्ति करना चाहिए। रोज मंगल आरती, 16 माला, गुरु पूजा, क्लास, 4 नियम, पढ़ाई, और बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना चाहिए कि भगवान कृष्ण हम पे प्रसन्न हो, राधा रस बिहारी को प्रसन्न करना है। तो हमें बहुत बड़ा कृपा मिला है, उसका वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कोई बंदर को पकड़ के बड़ा हीरा दे दो उसको, उसको वैल्यू मालूम ही नहीं, वो खेल रहा है उसके साथ, लेकिन वो पकड़ के रखा है, दूसरे को देता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत महंगा है, इसलिए क्योंकि ये बहुत चमक रहा है, खिलौना अच्छा है, राइट? किसी बच्चे को 2000 रुपए का नोट दे दो और वो पकड़ के रखेगा, देगा नहीं किसी को, इसलिए नहीं क्योंकि उसको मालूम है ये वैल्यू है, इसलिए कि ये लाल है ना, अच्छा है। उसी तरह भक्ति अच्छा है, लाल है, चमक रहा है, हम पकड़ के रखे हैं, लेकिन इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो हम कभी अपराध नहीं करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, विग्रह की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, प्रसाद की सेवा करेंगे, और पैराफेरनेलिया वस्तु जो है उनका देखभाल करेंगे, शास्त्र की सेवा करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे हम। ये हमें वैल्यू मालूम होना चाहिए, मूल्य मालूम होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर, हमें पाल रहे हैं, अपने घर पे रख रहे हैं, राइट? भगवान अपनी सेवा के लिए तो किसको भी बुला सकते हैं ना, इंद्र, चंद्र, वरुण, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ब्रह्मा, शिवा, सबको बुला सकते हैं इधर, लेकिन हमको दे रहे हैं कि आप लोग करो। हम लोग लायक नहीं है, बद्ध जीव है, फिर भी हमको मौका दे रहे हैं। तो जो भी हमको सेवा दे रहे हैं, कोई भी हमको सेवा देता है वो नहीं देखना चाहिए कौन दे रहा है, कृष्ण की सेवा है, बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। भले ऐसे कोई भक्त हो जिसको आप अपना दुश्मन समझते हो और वो आपको बोलता है झाड़ू मारो मंदिर में, लेकिन हमें बोलना चाहिए कृष्ण की सेवा है, उसको नहीं देखना चाहिए। वही भक्त रसगुल्ला लाके देगा तो हम बोलेंगे हाँ थैंक यू महाप्रसाद, कृष्णा इज सो मर्सीफुल ही गेव मी महाप्रसाद थ्रू माय एनिमी, राइट। दुश्मन के द्वारा महाप्रसाद कृष्ण दे रहे हैं, दुश्मन के द्वारा सेवा कृष्ण नहीं दे रहे हैं, तो हमें खुशी खुशी सेवा करना चाहिए। हम एक सेवक हैं इधर, वी आर सर्वेंट्स, तो हमें खुशी खुशी मालिक की सेवा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि मालिक खुश हो। दूसरे सेवक के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मालिक खुश हो, नहीं तो हमारा पगार बंद हो जाएगा, पगार मतलब भगवान का कृपा चला जाएगा, राइट। अगर एक सेवक दूसरे सेवक से परेशान है फिर भी वो उसे अच्छा व्यवहार करेगा, क्यों? मालिक अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, मालिक खुश होना चाहिए। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कृपा है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से भगवान की सेवा करना चाहिए, अपना साधना करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई कमेंट्स है या प्रश्न है तो बोल सकते हैं। वांट टू ऐड समथिंग? कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्ण।